खुदावंद यीशु मसीह के नाम में जो कल आज बल्कि अब तक यकसा है आप सबकी सलामती हो। सो इससे पहले कि हम खुदावंद के जिंदगी बख्श कलाम में से सीखें, आप सबको याद दिलाना चाहता हूँ कि हम इफिसियों के खत उसके चार बाब में से उसकी 17वीं, 18वीं और 19वीं आयत से खासकर 18वीं आयत में पालूस रसूल ईमानदारों को लिखते हुए उनकी हौसला अफजाई, उनकी तरबियत और नसीहत के लिए कि ज़मीन पर किस तरह ज़िंदगी गुजारनी है, उन सब को हुक्म के तौर पर कहता है कि हमें उन लोगों की तरह ज़िंदगी नहीं गुजारनी जो रूहानी तारीकी में है। तो मैं चाहता हूँ कि आए आज हम, जैसे हमने पिछले दिनों में रूहानी तारीकी पर गौर की थी, आज हम जिस्मानी तारीकी पर गौर करेंगे। पिछले दिनों में हमने रूहानी तारीकी में से जो बात सीखने के लिए जानी बाइबल मुकद्दस में, वो क्या थी? दूसरा करंथियों उसके चार बाब की चार आयत के मुताबिक कि हमारा एक मुखालफ है जिसका खुलेआम ये दावा है कि वो खुदा और खुदा के लोगों का दुश्मन है। उसे बाइबल मुकद्दस बहुत से नामों से पुकारती है, जैसे अबलीस, शैतान, झूठ का बाप, अल्ज़ाम लगाने वाला, फरेब देने वाला, नूरानी फरिश्तों का हम शक्ल बन जाने वाला, और फिर लूसीफर और हवा की अमलदारी का हाकम, और ख़ासकर यीशु मसीह की खुशखबरी बदलने वाला, उसे क्या कहते हैं? दूसरा यीशु भी बाइबल मुकद्दस में कहा गया है। तो दूसरा करंथियों चार बाब उसकी चार आयत के मुताबिक अबलीस को ये लकब दिया गया है आरजी तौर पर इस जमीन पर, इस दुनिया यानी इस जहां का खुदा। उसका एक ही मकसद है नूर के उन तमाम फर्जंदों के लिए, यानी कि हर एक ईमानदार के लिए, कि वो राह हक से, वाहे नूर से गुमराह होकर तारीकी की तरफ चलें। इसलिए आज हम इससे पहले कि जिस्मानी तारीकी यानी कि जिस्मानी अंधेपन के बारे में सीखें, मैं चाहता हूं कि आए हम चंद लम्हों के लिए खुदावंद की हिकमत और दुनाई मांगे। खुदा बाप, हम तेरे बेटे यीशु मसीह के बगैर कुछ भी नहीं। आज की इस खूबसूरत सुबह के लिए जो खुदावंद खुदा तूने तमाम ईमानदारों को जो मुल्क पाकिस्तान में बसते हैं बख्शी, खुदावंद खुदा तेरे शुक्रगुजार हैं तेरे लोगों की हिफाजत और निगेबानी के लिए, और ख़ासकर इस वक्त इस घड़ी के लिए जब तेरा कलाम सीखें। हम सब के लिए तेरा कलाम हमारे कदमों के लिए चिराग और राह के लिए रोशनी बने, और आज हम जो कुछ भी सीखें अपने दिलों की ज़मीन पर उस बीज को 100 गुना फल लाने के लिए खुदावंद तेरी कुदरत को असर करने दें। हम सब के साथ हो, खुदावंद यीशु मसीह के नाम में ये दुआ मांगते हैं, आमीन। इफिसियों चार बाब उसकी 17वीं आयत से पालूस रसूल हुक्म के तौर पर हुक्मिया रवैया से कहता है, मैं ये कहता हूँ और खुदावंद में जताए देता हूँ कि जिस तरह गैर कौमें अपने बहुदा ख्यालात के मुआफ़क चलती हैं, तुम आइंदा को उस तरह ना चलना। 18वीं आयत, गैर कौमों यानी कि गैर ईमानदारों, क्योंकि उनकी अकल तारीख हो गई है और वो उस नादानी के सबब से जो उनमें है अपने दिलों की सख्ती के बायस खुदा की जिंदगी से खारिज हैं। 19वीं आयत, उन्होंने सुन होकर शहवत परस्ती को इख्तियार किया ताकि हर तरह के गंदे काम हिर्स से करें। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से आज सुबह हम सब की रहनुमाई हो, आमीन। हमने रूहानी तरक्की के बारे तारीकी के बारे में देखा था, जिसमें हमने देखा कि हर एक वो बंदा बंदी जिसने यीशु मसीह को कबूल नहीं किया, बाइबल मुकद्दस से क्या कहती है कि वो रूहानी तौर पर क्या है? अंधा है। जिसके बारे में पालूस रसूल, जब हम रोमियो 3 बाब उसकी 23वीं आयत को देखते हैं, तो वहाँ पर इस बात को यूं कहता है कि सब ने गुनाह किया, यानी कि सब गुनाह में पैदा हुए सवाए यीशु मसीह के, सब लोग चाहे वो कहीं का भी रहने वाला हो, कैसा भी उसका रंग हो, कैसा भी उसका कद हो, कोई भी जात पात हो। बाइबल मुकद्दस कहती है कि सब ने गुनाह किया, आदम से लेकर आने वाली तमाम नस्लें किस में पैदा होती हैं? गुनाह की हालत में, जिसके बारे में दाऊद नबी इस बात को वाजह तौर पर कहता है कि मिन्नू विच गुनाह दे जमया मेरी माई, यानी कि मैंने गुनाह के हालत में सूरत इख्तियार की। तो पालूस रसूल कहता है कि सब रूहानी तौर पर खुदा से क्या होते हैं? जुदा पैदा होते हैं। यीशु मसीह ने खुद कहा है कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो, जब यीशु मसीह निकुदीमस से बातें कर रहे थे, वो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकते। क्यों? क्योंकि रूहानी तौर पर अंधे हैं। पालूस रसूल पहले करंथियों हमने उसके दूसरे बाब की 16वीं आयत से 16वीं आयत तक पढ़ा था कि रूहानी बातों को परखना जिस्मानी बातों आदमियों के लिए नामुमकिन है, क्योंकि जिस्मानी लोग रूहानी बातों को समझ नहीं सकते। उसका कहने का मतलब यही है कि जो अभी तक जिस्मानी तौर पर रूहानी तौर पर जिस्मानी है लेकिन रूहानी तौर पर अंधे हैं, वो खुदा की बातों को समझ नहीं सकते। तो ये हमने सीखा था, और इस मौजू पर हमें बहुत सी मिसालें मिलती हैं रूहानी अंधेपन पर या रूहानी तरीकी के बारे में। अगर हम नूह नबी की जिंदगी को देखें तो नूह खुदा का जो रास्तबाज बंदा था, जो रास्तबाजी का पैगाम देता था, पदेश 6 बाब में हम देखते हैं कि नूह की जिंदगी का 120 साल का अरसा कश्ती को बनाने से खत्म तक होने तक लगा, और उसने 120 साल तक क्या की? खुलेआम रास्तबाजी की मुनादी की, लेकिन वो लोग उसकी बातों को समझ ना सके, क्योंकि जिस्मानी थे, नफसानी थे, रूहानी तौर पर क्या थे? अंधे थे, और उन्होंने कबूल नहीं किया। तो आखिर को क्या हुआ? नूह और उसके खानदान के कितने? 8 लोग बचे, बाकी सब फना और तबाह बर्बाद हो गए। जो इसी बात की तरफ इशारा है कि यीशु मसीह ने कहा है कि आखिर जब मैं आऊंगा तो अदालत करूंगा, जो कोई मुझ पर ईमान नहीं लाएगा वो क्या होगा? वैसे ही जैसे वो पानी में गर्क हुए, वैसे ही बाइबल मुकद्दस मुकाशवा की किताब उसके 19वें बाब के मुताबिक बयान करती है कि लोग दूसरी मौत का शिकार होंगे। सो रूहानी तरीकी पर हम बहुत कुछ सीख समझ सकते हैं बाइबल मुकद्दस में से। पदेश से लेकर मुकाशवा तक हमें बहुत सी कहानियों का पता चलता है। तो आज इस थोड़े से वक्त में जो हमारे पास है, मैं चाहता हूं कि आज हम जिस्मानी जिस्मानी तारीकी पर गौर करें। बाइबल मुकद्दस में दो किस्म की तारीकी, जिसे कहते हैं कि अंधेपन के बारे में बात की गई है, रूहानी तौर पर और जिस्मानी तौर पर। रूहानी तौर पर जब अंधापन कहा जाता है, उन तमाम लोगों की तरफ इशारा है जो अभी तक नए सिरे से पैदा नहीं हुए, जिन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को अपना मसीहा, नजात दहिंदा, मालक और ज़िंदगी देने वाला कबूल नहीं किया। तो जिस्मानी तरीकी के बारे में हम देखेंगे आज। बाइबल मुकद्दस में जिस्मानी तरीकी के बारे में हमें बहुत सा जिक्र मिलता है। पुराने अहदनामा में सैमसन, जो खुदा का सूरमा था, वो जिस्मानी तौर पर अंधा हुआ जब उसकी आंखों को निकाला गया। वहां पर हमें जिस्मानी क्या कहते हैं कि अंधापन नजर आता है, यानी कि मुकम्मल तारीकी। जब किसी की आंखें नहीं होती, वो देख नहीं सकता, वो सिमत का या रास्ते का हिसाब नहीं लगा सकता कि किधर को जाना है। इसका अंदाजा हम खुद भी लगा सकते हैं। अगर अपनी आंखें बंद करें और बांध दें तो हम देख नहीं सकते, और हमारे 100% गिरने का किसी दीवार से, किसी गाड़ी से, किसी क्या कहते हैं कि खड्डे में गिर जाने का क्या है? 100% उसकी क्या बात है? हकीकी है, अटल है। इसलिए आज हम देखेंगे जिस्मानी अंधेपन के बारे में, जो कि यहूदी नजरियात के मुताबिक बहुत दफा कहते थे कि ये इसलिए है क्योंकि गुनाह किया है, जिसमें हमें सैमसन की बात नजर आती है कि उसने खुदा की नाफरमानी की, उसने अपना राज उस गैर कुवाम औरत को बताया, और उसने उसके बालों का राज जानकर उसके बाल काट दिए, और फिर सैमसन इस काबिल नहीं था कि वो अपने दुश्मनों से लड़ सके। उसे उसके उसे क्या करना पड़ा? अंधेपन का सामना करना पड़ा। तो यहूदी रिवाज में बहुत दफा अगर किसी पर किसी किस्म की बीमारी परेशानी आती थी तो लोग ये सोचते थे कि शायद ये किसी ना किसी गुनाह के बायस है। इसलिए आज मैं चाहता हूँ कि इस कहानी पर गौर करें और इसमें से चंद एक सच्चाइयाँ सीखें, क्योंकि हर एक बीमारी, हर एक इम्तहान जो बनी नु इंसान पर आता है, उसके पीछे हर वक्त यही वजह नहीं होती कि किसी ने गुनाह किया है, तब वो मुश्किल परेशानी बीमारी या किसी बुरे हालात का सामना कर रहा है। तो मेरे साथ निकालें अगर पढ़ सकते हैं, जो बहरुल मुकद्दस पढ़ना चाहते हैं लेकर आए हैं या मौजूद हैं। यहन्ना की इंजील, उसका नामा बाप। यहन्ना की इंजील उसके नामे बाप को हम पहली आयत से पढ़ेंगे, और यहाँ पर यूं मरकूम यानी कि लिखा गया है, खुदावन का बंदा यहन्ना कहता है, फिर उसने जाते वक्त एक शख्स को देखा जो जन्म का अंधा था। किसने? खुदावन यीशु मसीह ने। यीशु मसीह जा रहे थे, रास्ते में थे, लेकिन सवाल ये है कि वो कहाँ जा रहे थे। जब हम पिछले बाप का जायजा लेते हैं तो पिछले बाप में हमें पता चलता है कि यीशु मसीह हैकल में थे। यीशु मसीह सुबह सवेरे बियाबान से वापस हैकल में आए और वहां पर तालीम देना शुरू की, और जो उस वक्त के मजहबी रहनुमा थे जिन्हें फकी फरीसी और मूसा की क्या कहते हैं शरीयत को मानने वाले जो रब्बी या आलम उस दौर के कहलाते थे, फकी फरीसी या सदूकी, वो सब यीशु मसीह के पास एक औरत को लेकर आते हैं और यीशु मसीह को जुमाने के लिए कहते हैं कि ये एन फेल यानी कि जना के वक्त पकड़ी गई है, तू इसके बारे में क्या बताता है? मूसा ने कहा है कि ऐसी औरतों को ऐसे लोगों को संसार करना चाहिए। तो यीशु मसीह ने उस औरत का फैसला किया और बातचीत करते हुए आगे यीशु मसीह उन सबको समझा रहा है, लेकिन वो समझ नहीं रहे। एक और बड़ी दिलचस्प बात, रूहानी तौर पर हमें अंधापन नजर आता है और बहुत दफा मजहबी तौर पर अंधापन हमें फकी फरीसी भी इसी तरह नजर आते हैं। मत्ती 23 बाब के मुताबिक यीशु मसीह ने उनको क्या कहा था? तुम अंधेरा बताने वाले हो। तुम दुनिया के सामने तो कहते हो कि तुम्हें समझ है, लेकिन तुम रूहानी तौर पर मजहबी तौर पर क्या हो? अंधे हो। वक्त की कमी के बायस अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो मत्ती की इंजील उसके 23वें बाब को पढ़ें। यीशु मसीह वहां पर फकीयों फरीसियों पर यही अफसोस करते हैं कि तुम अपनी अपनी मजहब परस्ती का क्या करते हो, ढोल बजाते हो और लोगों पर खुदा की बादशाही बंद करते हो, लोगों को बुरा भला और बुरी राह बताते हो, कहते हो कि तुम इस काबिल नहीं हो। तो यीशु मसीह यहाँ पर भी फकीयों फरीसियों से सामना कर रहा है, और जब यीशु मसीह उनके दिलों की हाल बताता है तो लोग उसे, खासकर फकी फरीसी कहते, तुझमें बदरू है, तू कैसे ये सारी बातें जानता है? और वो अंधरा क्या थे? तमाम मजहबी लोग रूहानी तौर पर अंधे बने हुए थे, और वो उस खुदावन के अवतार, उस मोजजे को जो मसीह मसा किया हुआ उनकी जिंदगी में निजात दहिंदा उनके भी पास आया, उनको उन्होंने कबूल ना किया। इसीलिए आपको याद होगा यीशु मसीह की जिंदगी के बारे में यूहन्ना की इंजील उसके पहले बाप में कहा गया है कि वो अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे कबूल ना किया। नूर तारीकी में चमका। नूर किस बात की अलामत है? देखना, वाजिया तौर पर जाहर करना। तारीकी, तारीकी में कोई देख नहीं सकता। तारीकी गहरी है, तारीकी में कोई चल नहीं सकता, अगर चलेगा तो ठोकर खाएगा। सो ये सारी बातें चल रही हैं, इसलिए यीशु मसीह ने उस जन्म के अंधे को देखा जो रास्ते में यीशु मसीह को मिला। तो दूसरी आयत में लिखा है, और उसके शागिर्दों ने उससे पूछा, ए रब्बी, किसने गुनाह किया था? जो ये अंधा पैदा हुआ, इस शख्स ने या इसके माँ बाप ने? ये सवाल हमें नजर आता है बार बार दोहराते हुए तारीख में, बहुत दफा हमारे मौजूदा माहौल में। अगर किसी पर बीमारी, अगर किसी पर मुश्किल आ जाए, खासकर बहुत से दूसरे लोगों के नजरियात में यही बात कहते हैं कि कोई ना कोई गुनाह, कोई ना कोई खता की है जो ये लानत, ये मुसीबत, ये परेशानी इस बंदे या बंदी पर आई है। यीशु मसीह के शागिर्द जो के यहूदी थे, उनकी सोच में यही बात थी कि शायद इसने कोई गुनाह किया है, इसके बाद ये लानत में पैदा हुआ है, अंधेपन की लानत में पैदा हुआ है। लेकिन यीशु मसीह ने क्या जवाब दिया? यीशु ने जवाब दिया, ना इसने गुनाह किया था ना इसके माँ बाप ने, बल्कि ये इसलिए हुआ कि खुदा के काम उसमें जाहिर हो। आप सबको याद होगा अय्यूब नबी की कहानी। अय्यूब नबी जो कि रासबाज था, अपनी जमीन जिंदगी में वो दुनिया के एक कोने से, अपने इलाके के एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक मशहूर था, रासबाज था, ईमानदार था, परहेजगार था, दुआगो था, खैर खुरैत करने वाला था, रहम दिल था, इंसाफ पसंद था। और अय्यूब नबी ना सिर्फ आदमियों के सामने बल्कि वो खुदा की नजर में रास्तबाज बंदा था, उसकी मानद कोई भी ना था। और अय्यूब ना के सिर्फ दुनिया के लोगों, ना के सिर्फ खुदा के सामने, बल्कि आसमान के फरिश्तों के सामने भी एक बहुत उम्दा मिसाल थी। क्यों? आगे जब आप अय्यूब की जिंदगी का जिक्र पढ़ते हैं तो शैतान पूछता है कि अगर तू अपने बंदा अय्यूब की तरफ से अपनी क्या करता है, हद बंदी हटा लेता है, अपनी हिफाजत को दूर करता है, तो फिर देख तेरा बंदा तेरे मुंह पर किस तरह लानत करता है। सो लंबी कहानी मुख्तसर वक्त को नजर रखते हुए कि बहुत दफा हमें नजर आया है कि उसके दोस्त आकर उसे इसी बात के लिए कहते हैं कि ये मुसीबत, ये परेशानी, तेरे बच्चे जो मर गए हैं, तेरा कारोबार, तेरी जमीन, तेरा सब कुछ जाता रहा, ये इसलिए हुआ कोई ना कोई तुमने गुनाह किया है। याद रखें, हर एक मुसीबत, हर एक इम्तहान जो हम पर आता है, उसके पीछे गुनाह बहुत दफा वजह नहीं होती। अगर आज आप अपनी जिंदगी में किसी किस्म का इम्तहान, किसी किस्म का हमला जो अबलीसी तौर पर आपके खानदान पर, आपकी जिंदगी में, आपकी शख्सी रूहानी तरक्की में, आपके कारोबार पर किसी किस्म का ऐसा हमला या ऐसी रुकावट है, तो खुदा से पूछें, खुदा के हजूर झुकें। मत अपने दोस्तों को सुनो, खासकर जैसे अय्यूब के दोस्त। अय्यूब के दोस्त उसके पूरे सफर में, पूरी किताब में क्या करते हैं, उस पर अल्जाम लगाते हुए, उसे नीचा करते हुए, उसे झूठ बोलते हुए, उससे कहते हैं इसी बात के लिए कि तूने कुछ ना कुछ किया है जो खुदा ने तुझ पर ये सारे हालात होने दिए हैं। अगर आज आप ऐसे हालात में से गुजर रहे हैं, तो याद रखें कि हो सकता है कि आपका इम्तहान गुनाह के बाद हो, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में ये तालीम मिलती है। ग्रंथियों की कलीसिया में कुछ लोगों ने गुनाह की हद पार कर दी और खुदावन ने क्या किया, उनको वक्त से पहले मौत के हवाले कर दिया, उनको जमीन से रुखसत कर दिया, बहुत से बीमारी में पड़ गए, बहुत से सो गए। और पहले यूहन्ना के खत में भी यही लिखा है कि कुछ ऐसे गुनाह हैं, ऐसे गुनाह हैं जो मौत का बायस नहीं बनते, कुछ ऐसे गुनाह हैं जो बंदे को मौत की हालत में ले जाते हैं। जैसे हनन्याह और सफीरा का गुनाह कैसा था, उन्होंने खुदा से, यीशु मसीह से, रूह कुद्दस से और फिर खुदा के बंदा पत्रस से उसके मुंह पर झूठ बोला और कहा कि हमने कुछ गलत नहीं किया, तो उनका गुनाह किस तरफ ले गया, उनको मौत की तरफ। तो ऐसे गुनाह हैं जो बहुत दफा हम करते हैं, जो हम पर जिस्मानी रूहानी तौर पर या दूसरे नजरिए की लानते हम पर भेजते हैं। तो इसके बारे में हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। लेकिन आज मैं आप सबको, आपकी हौसला अफजाई के लिए, कि अगर आप किसी मुश्किल हालात में से गुजर रहे हैं, तो खुदावन से, खुदावन में कायम रहें, ना के कहें कि आपने कोई ऐसा ऐसा गुनाह किया है जो कि आपके दुख और मुसीबत और परेशानी का बायस है। क्योंकि बाइबल मुकद्दस में, ग्रंथियों के खत में लिखा हुआ है कि खुदा हमें आजमाइश में हद से ज़्यादा नहीं डालता, अगर वो आजमाइश में डालता है, इम्तहान हम पर आते हैं, तो वो उसमें से निकलने की राह भी तैयार करता है। इसलिए आज के लिए मैं चाहूँगा कि इस बात पर गौर करें, जबूर 23 उसकी पहली आयत, खुदावंद मेरा चुपान है, मुझे कमी ना होगी, वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बिठाता है, वो मुझे राहत के चश्मों के पास ले जाता है। चौथी आयत में लिखा है, खा मौत के साया की वादी में से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा, क्योंकि वो खुदावंद यीशु आपके और मेरे साथ है। आए हम खुदावंद के जुड़ चुके, आगे चलकर हम और गहरे तौर पर सीखेंगे रूहानी और जिस्मानी अंधेपन के बारे में। इसलिए आए हम दुआ करें। खुदा बाप, आए हुए तेरी तमाम बेटियों के लिए बंदों के लिए, बंदियों के लिए, बच्चों के लिए, नौजवान बुजुर्ग माओं के लिए, सबके लिए तेरी बरकत चाहता हूँ खुदावंद। और हम सबको खुदावंद अपनी हिफाजत में रख, शोलाजन तलवारों की खुदा खुदा हिफाजत में रख, ताकि इबलीस और उसका झूठ और उसका कोई भी फरेब हमें बर्बाद ना करे, बल्कि खुदावंद तेरी पहचान में बढ़ते जाएं। सबके साथ हो, यीशु मसीह के नाम में ये दुआ मांगता हूँ।